आर्यांश के पास अब करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो बस दीवा के आसपास रहना चाहता था। आर्यांश पिछले 2 दिन से उसी पार्क में था जो लाइफ केयर हॉस्पिटल के सामने बना हुआ था। ठीक से खाना पीना ना करने और लगातार धूप के कांटेक्ट में रहने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। रात के वक्त जब श्रेष्ठ और वर्तिका आर्यांश को ढूंढते हुए लाइफ केयर हॉस्पिटल के सामने बने पार्क में पहुंचे, तो उन्होंने आर्यांश को एक बेंच पर सोया हुआ पाया। वो रात की ठंड में ठिठुर रहा था और उसका शरीर बुखार से तप रहा था। श्रेष्ठ और वर्तिका आर्यांश को लेकर सीधा लाइफ केयर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। जैसे ही आर्यांश वहां गया, उधर पृथ्वी को खबर मिल गई थी और वो पुलिस लेकर आधी रात को हॉस्पिटल पहुंच गए थे। पृथ्वी को यही लगा कि आर्यांश दीवा के पास होगा, इसलिए वो सीधा दीवा के रूम में पुलिस के साथ गए। अचानक कमरा खुलने और आहट की वजह से दीवा जाग गई थी और उलझन भरी निगाहों से पृथ्वी और पुलिस की तरफ देख रही थी। कहाँ है वो लड़का, मुझे बताओ, और इस बार तुम उसे बचाने या उस पर दया करने का मत कहना, पृथ्वी ने दीवा की तरफ देखकर गुस्से में कहा। आप किसकी बात कर रहे हैं मिस्टर कपूर, दीवा ने धीमी आवाज में पूछा। उसने पुलिस की तरफ देखा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दीवा ने हैरानी से पूछा, आप इतनी रात को पुलिस के साथ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपकी फैमिली से किसी तरह की कोई हेल्प नहीं चाहिए, फिर आप लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो? दीवा की बातों से पृथ्वी को समझ आ गया था कि आर्यांश उसके पास नहीं आया है। वो सिर हिलाकर बोले, अगर आर्यांश तुम्हारे पास नहीं है तो कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है, कौन सा मैं उसे अपने साथ लेकर घूमती हूँ। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, दीवा ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। अब तो पृथ्वी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने दीवा से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे बस ये खबर मिली थी कि आर्यांश यहाँ पर आया है, तो मुझे लगा कि वो तुमसे मिलने के लिए आया होगा और तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा होगा। अगर आर्यांश लाइफ केयर हॉस्पिटल में आया है और तुम्हारे पास नहीं पहुँचा तो वो कहाँ है? आर्यांश हॉस्पिटल में है, दीवा ने जल्दी से घबरा कर पूछा। पृथ्वी ने हाँ में सिर हिला दिया था। उन्होंने दीवा को आराम करने का कहा और कमरे से बाहर निकल गए थे। पृथ्वी ने अपनी पहुंच के चलते अगले कुछ ही मिनट में आर्यांश के बारे में पता लगा लिया था। आर्यांश जनरल वार्ड में था। उन्हें वहां देखते ही श्रेष्ठ और वर्तिका तुरंत छुप गए थे। अगर पृथ्वी उन्हें वहां देख लेते तो पृथ्वी उन्हें भी इस बात के लिए फोर्स करते कि वो आर्यांश की हेल्प ना करे। डॉक्टर आर्यांश को ट्रीट करके उसके पास से हटे ही थे कि वो सामने पृथ्वी से जा टकराया। उस हॉस्पिटल में ऐसा कोई नहीं था जो आर्यांश और पृथ्वी कपूर को नहीं जानता था। पृथ्वी ने आर्यांश को जिस तरह से अपनी प्रॉपर्टी और खानदान से बेदखल किया था उसके बारे में भी सब जानते थे। मिस्टर कपूर की हालत खराब है और उन्हें इमीडिएटली ट्रीटमेंट की जरूरत है। हम एक पेशेंट के तौर पर उन्हें यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं सर, डॉक्टर ने तुरंत सफाई देते हुए कहा। क्या हुआ है इसे, सच में बीमार है या यहाँ रहने के लिए दिखावा कर रहा है? पृथ्वी ने ठंडे लहजे में कहा। वर्तिका और श्रेष्ठ वहीं पर छुपे हुए थे। पृथ्वी की बेरुखी देखकर वर्तिका ने अपनी मुट्ठियां कस ली थीं और वो दबी आवाज में बोली, दादू इतने रूट कैसे हो सकते हैं, भला वो हॉस्पिटल में रहने के लिए बीमार होने का नाटक क्यों करेंगे? शांत हो जाओ, दीवा इसी हॉस्पिटल में है और इस वजह से दादू को ऐसा लग रहा है। वो बस दीवा को लेकर थोड़ा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं ताकि आर्यांश कोई गलती ना करते, श्रेष्ठ ने उसे सहलाते हुए समझाया। वहीं पृथ्वी की बात सुनकर डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, इन्हें बहुत तेज फीवर है और साथ ही बॉडी डिहाइड्रेटेड है, लंबे समय तक इन्होंने कुछ नहीं खाया पिया है इसलिए कमजोरी भी आ गई है। हाँ तो पैसे होंगे तब कुछ खाएगा पिएगा ना, जो भी हो ठीक होने पर इसे यहाँ से निकाल देना और इलाज के पैसे ले लेना। पृथ्वी ने एक नज़र आर्यांश की तरफ देखा जो बेड पर बेसुध सा सोया हुआ था और अभी भी बेहोश था। उसके बाद पृथ्वी तुरंत वहां से चले गए थे। उनके जाते ही श्रेष्ठ और वर्तिका बाहर निकल कर आ गए थे। जिस तरह से आधी रात को मिस्टर कपूर दीवा के कमरे में पहुंचे थे और आर्यांश को ढूंढ रहे थे, उससे दीवा परेशान हो गई थी। वो पृथ्वी के पीछे जनरल वार्ड में पहुंच गई थी, लेकिन उन्हें वहां देखकर वो छुप भी गई थी। जैसे ही पृथ्वी वहां से गए, दीवा तुरंत आर्यांश के पास पहुंची। उसके सामने श्रेष्ठ और वर्तिका खड़े हुए थे। वर्तिका दीवा को देखकर हल्का सा मुस्कुराई और उसकी तरफ बढ़कर उसके बाजू को सहलाकर कहा, तुम ठीक हो ना? दीवा ने फीकी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सिर हिला दिया था और फिर आर्यांश की तरफ देखकर पूछा, लेकिन इसके साथ क्या हुआ है? दादू ने जो किया उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, ऊपर से दादू ने भाई की सारी प्राइवेट एसेट्स भी छीन ली हैं, इनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं है और पिछले 2 दिनों से शायद ये उसी पार्क के अंदर थे, वर्तिका ने मायूस आवाज में कहा। दीवा के चेहरे पर भी उदासी के भाव उभर आए थे। वो आर्यांश के पास गई और उसके माथे पर हाथ रखा। आर्यांश का सिर अभी भी बुखार से जल रहा था, लेकिन उस हालत में भी आर्यांश दीवा के एहसास को महसूस कर सकता था। दीवा ने अपना हाथ हटाना चाहा तो आर्यांश ने उसके हाथ को पकड़ लिया था, जैसे उसका साथ उसे सुकून दे रहा था। दीवा ने जैसे तैसे करके अपना हाथ आर्यांश के हाथ से अलग किया और फिर वर्तिका की तरफ पलटकर बोली, अच्छा हुआ तुमने इसे ढूंढ लिया और अब इसका ख्याल रखने के लिए तुम हो। फिलहाल मिस्टर कपूर काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं, वो मेरे पास भी आए थे, जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तब सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तब तक तुम आर्यांश को संभाल ही लोगी।
काश दादू का गुस्सा शांत होना इतना ही आसान होता दीवा। मुझे लगता है कि भाई की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और उन्हें खुद को संभालना ही होगा, वर्तिका ने परेशान स्वर में जवाब दिया। दीवा वहां ज्यादा देर रुककर या आर्यांश की परवाह जताकर ये साबित नहीं करना चाहती थी कि आज भी उसके दिल में आर्यांश को लेकर थोड़ी सी भी जगह है। हाँ, ये बच्चा नहीं है, खुद ही देख लेगा, दीवा ने बिना किसी भाव के कहा और फिर अपने कमरे में जाने लगी। वर्तिका उसे रोकना चाहती थी लेकिन श्रेष्ठ ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। दीवा के जाते ही श्रेष्ठ ने वर्तिका को समझाते हुए कहा, अकेला आर्यांश नहीं है जो ये सब सफर कर रहा है, दीवा को भी काफी कुछ झेलना पड़ा है और उसने अपना बच्चा खोया है। बेहतर होगा कि तुम्हारे आंच को ठीक करने और उसके साथ रहने का बर्डन उस पर न डालो। वर्तिका ने सिर हिलाकर उसकी बात पर हामी भरी। जब आर्यांश की कंडीशन थोड़ी ठीक हुई तब वर्तिका ने समीक्षा को कॉल करके आर्यांश के मिलने के बारे में बता दिया था। सुबह के करीब जब आर्यांश की तबीयत थोड़ी सुधरी तब वर्तिका ने उसका डिस्चार्ज करवाया और उसे अपने घर ले गई थी। आर्यांश अभी भी ठीक से होश में नहीं था पर वर्तिका उसे ज्यादा देर तक हॉस्पिटल में भी नहीं रख सकती थी। घर आने पर वो आर्यांश का पूरा ख्याल रख रही थी। दोपहर के करीब जब आर्यांश की नींद टूटी तब उसका सिर दर्द के मारे फट रहा था। कल रात जो भी हुआ उसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था लेकिन आंख खुलने पर उसने इधर उधर देखा तो वो समझ गया था कि वो वर्तिका के घर पर है। आर्यांश के आसपास कोई नहीं था। उसने वर्तिका को बुलाने के लिए आवाज लगाई। वर्तिका, वर्तिका, मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो तुम? आर्यांश की आवाज इतनी धीमी थी कि कमरे से ठीक से बाहर तक नहीं जा रही थी। उसका गला बैठ गया था। वो खुद ही दीवार के सहारे बाहर आया तो श्रेष्ठ और वर्तिका साथ में लंच कर रहे थे। आर्यांश उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अगर दादू को तुम दोनों के बारे में पता चला तो बेवजह तुम दोनों को भी उनका गुस्सा सहना पड़ेगा।
आर्यांश को देखते ही वर्तिका जल्दी से उठकर गई और उसके गले लग गई थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। भाई, आपने मुझे बहुत डरा दिया था। अगर दादू ने आपको निकाल दिया था तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आप अकेले हो? और उस पार्क में आप पिछले दो दिन से कर क्या रहे थे? क्या हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है जो आप मेरे घर पर नहीं आए? शहर के मामले में मदद लेने भी आप मेरे पास आए थे तो फिर खुद के लिए क्यों नहीं आए? वर्तिका ने आर्यांश से शिकायत लगानी शुरू कर दी थी। श्रेष्ठ भी उनके पास में आ चुका था। लास्ट टाइम आर्यांश ने वर्तिका पर हाथ उठाया था उस वजह से श्रेष्ठ उससे अभी भी नाराज था और उसकी तरफ ठीक से देख तक नहीं रहा था। उसकी इस बेरुखी को आर्यांश भी महसूस कर सकता था। आर्यांश ने वर्तिका को सहलाया और उसे खुद से अलग करके धीमी आवाज में कहा, मॉम की तरह रिएक्ट मत करो, उन्होंने तुम्हें मेरे पीछे भेजा होगा। हाँ, अब क्या करें, मजबूरी रह गई, वरना हमें क्या फर्क पड़ता है कि तुम किसी पार्क में रहो या फिर रोड पर सो, श्रेष्ठ ने मुंह बनाते हुए कहा। आर्यांश उसकी बात सुनकर हल्का सा हंस दिया था। फिर उसने वर्तिका की तरफ देखा जो चेहरे पर परवाह लिए उसकी तरफ देख रही थी। आर्यांश को वो लम्हा याद आ गया था जब आखिरी बार वो वर्तिका के घर आया था। वर्तिका ने आर्यांश को समझाने की कोशिश की थी लेकिन उल्टा उसने वर्तिका को गुस्से में थप्पड़ तक लगा दिया था। वो सब याद आते ही आर्यांश के चेहरे पर अफसोस के भाव उभर आए थे। उसके चेहरे के बदले हुए भावों को देखकर ही वर्तिका को समझ आ गया था कि आर्यांश क्या सोच रहा है। वर्तिका जल्दी से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर समझाते हुए कहा, आप मुझसे बड़े हो, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं जबकि तुम कुछ गलत नहीं कह रही थी, आर्यांश ने मायूसी से कहा। फिर उसने वर्तिका का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं बहुत बुरा हूं ना जो सबको हर्ट कर रहा हूं, तुम्हें भी मैंने थप्पड़ लगाया, ऐसा करो तुम भी मुझे उतना ही कसकर मारो ताकि मेरे दिमाग में जो थोड़ा बहुत कचरा बचा है वो भी हट जाए। वर्तिका ने तुरंत नामे सिर हिलाया और हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं भाई, मैं आप पर हाथ कैसे उठा सकती हूँ, और मैंने आपको उसके लिए माफ़ कर दिया है, अब आपको सब समझ आ ही गया है और अपनी गलती का एहसास भी है तो पुरानी बातों को जाने देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सही नहीं किया और दादू भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैंने जो किया वो मेरे साथ होगा, तभी मुझे अपनी गलतियों का एहसास होगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, तुम भी बुरा मत मानो, आर्यांश बोला। वर्तिका को काफी अजीब लग रहा था जबकि आर्यांश बार बार उसे यही कह रहा था कि उसने वर्तिका पर हाथ उठाकर गलती की थी और वो भी उसे थप्पड़ मारे ताकि उसे भी इस दर्द का एहसास हो। वर्तिका बार बार मना कर रही थी। इस बीच श्रेष्ठ आगे आया और उसने आर्यांश के गाल पर कसकर थप्पड़ लगाया कि वो कुछ कदम लड़खड़ाकर पीछे हो गया था। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया था। आर्यांश और वर्तिका आंखों में हैरानी लिए श्रेष्ठ की तरफ देख रहे थे। आर्यांश का हाथ अभी भी अपने गाल पर था, मानो वो यकीन नहीं कर पा रहा हो कि उसे अभी एक कसकर तमाचा पड़ा है। आज तो श्रेष्ठ ने आर्यांश को दिन में तारे दिखा दिए हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।